प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, बिहार का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता।
प्राइम मिनिस्टर मोदी एंडोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, सेज गवर्नमेंट ब्रॉट लॉ अगेंस्ट करप्शन एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर इट्स परव्यू।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने के अपने पिछले निर्देशों में संशोधन किया।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मीट्स वीमेन मिलिट्री ऑफिसर्स, यूनाइटेड नेशंस वाउज इंडिया सपोर्ट फॉर UN एफर्ट्स ऑन जेंडर पैरिटी एंड वर्ल्ड पीस।
भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने आशा व्यक्त की कि शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करेगी।
एंड फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे अरेस्टेड इन कोलंबो फॉर अलेज्ड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about India Post IT 2.0.
जी हाँ अभिषेक, कभी डाकघर से केवल चिट्ठियां और मनी ऑर्डर ही भेजे जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। डाकघर भी अब अमेज़न जैसा एडवांस होने जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक अब डाकघर की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। भारत सरकार ने देश भर में APT यानी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की डिजिटल यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। 5,800 करोड़ रुपए के IT 2.0 प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार इस प्रोजेक्ट के बाद भारतीय डाक एक वैश्विक स्तर का लॉजिस्टिक नेटवर्क बन जाएगा। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित ये प्रणाली डाक क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ कार्य प्रणाली सुगम बनाएगी और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
This launch is a critical milestone for Digital India, making traditional postal services smarter, faster and more efficient. It transforms India Post into a digital logistics and communication infrastructure catering to urban and rural populations alike. The new DigiPIN system eliminates errors in address interpretation, especially in remote and rural areas. OTP verification ensures secure delivery of high value or sensitive packages like legal documents, passports and Aadhaar updates.
और अभिषेक, अपने श्रोताओं को बताएं कि आखिरकार APT सिस्टम है क्या? एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी या APT इंडिया पोस्ट का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे पूरे देश में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज, आधुनिक और मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। इससे पहले IT मॉडर्नाइजेशन 1.0 के अंतर्गत बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज को भी जोड़ा गया था, जबकि अब IT 2.0 प्रोग्राम के जरिए इंडिया पोस्ट को और भी स्मार्ट और मॉडर्न बनाने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें करीब 4,60,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए ट्रेन, रिट्रेन और रिफ्रेश सोच पर काम किया जाएगा। इससे सभी कर्मचारी नई तकनीक के साथ आसानी से काम कर सकेंगे।
Yes, and building upon the earlier IT modernization project 1.0, the Advanced Postal Technology Platform introduces a microservices-based application offering faster and more reliable citizen services. developed indigenously by the Center for Excellence in Postal Technology. The platform is hosted on the Government of India's Meghraj 2.0 cloud and supported by BSNL's connectivity backbone. The APT system introduces several next-generation capabilities, microservices and open API-based architecture, unified user interface, cloud-ready deployment, end-to-end digital solutions from booking to delivery, QR code payments and OTP-based delivery, open network system ensuring rural reliability, DigiPin, a 10-digit alphanumeric code for delivery accuracy and enhanced reporting and analytics.
और अपने श्रोताओं को बता दें कि ये सिस्टम जो है वो काफी एडवांस है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. इसमें 1,65,000 से अधिक डाकघर हैं. एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी को सरकार के मेघराज 2.0 क्लाउड पर होस्ट किया गया है और इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बीएसएनएल के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है.
सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट पायल.
The system has already demonstrated resilience by handling over 32 lakh bookings and 37 lakh deliveries in a single day. IT 2.0 enables India Post to enhance delivery accuracy, boost efficiency, and expand its role in financial inclusion and last mile connectivity. The successful completion of IT 2.0 reaffirms India Post's position as a modern, technology-driven service provider while maintaining its legacy of trust and unmatched rural reach. With this digital leap, India Post is set to bridge the rural-urban divide, promote financial inclusion, and deliver world-class postal and financial services to citizens nationwide. India Post, under the Department of Post, Ministry of Communications, operates one of the world's largest postal networks with over 1.65 lakh post offices. It plays a vital role in connecting rural and urban India through postal, financial, and logistic services while advancing the government's Digital India and financial inclusion initiatives. Payal Sharma for Parikrama.
So, with the report from our correspondent Payal Sharma, we conclude our discussion on India Post IT 2.0.
और अभिषेक, अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो इस क्रम में सबसे पहले मिजोरम चलें.
Yes, and in Mizoram, the government is actively engaged in building a robust sporting culture with the Olympics to take place in 2036. Though a small state, Mizoram has a strong sporting culture that is manifested in many Mizo youth playing in ISL and I-League clubs. Sporting is therefore a part of Mizo life.
With the aim of making it to the Olympic bar to take place in 2036, Mizoram is gearing up for building a strong sporting culture across the state. Towards this goal, the government has taken up Grassroots Sports Development Program, GSDO, in the state. Recently, the government has launched the Grassroots Sports Development Program at Gramlun Indoor Stadium Conference Hall in Aizawl. Speaking on the occasion, Sports Minister Mr. Lal Nyinglo Omar stated, "The Grassroots Sports Development Program, GSDP, is an initiative of Samagrasiksa Mizoram in collaboration with Mizoram State Sports Council." He said that under this program, they are opening 46 centers in different districts of Mizoram in which 9 sports disciplines will be implemented. The minister said that the ultimate aim is to produce as many athletes as possible from Mizoram to represent the nation at the international level competition, as India is bidding for the 2036 Olympics. He further emphasized that to achieve greater success, young athletes need to start from their grassroots and they should be supported adequately, allowing them to thrive in their respective sports. Therefore, the Grassroots Sport Development Program is expected to facilitate better opportunities for young athletes to excel, thus contributing positively to the sports community.
Grassroots Sports Development Program is an initiative of Samagrasiksa Mizoram. In collaboration with Mizoram State Sports Council, we are opening up 4 to 6 centers in different districts of Mizoram in which 9 sports disciplines will be implemented. The ultimate aim is to produce as many athletes as possible from Mizoram to represent the nation at the international level, not to mention about the national competitions.
For Parikrama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गुजरात के भुज में सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो की उपयोगिता और इसके द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के तरीकों पर चर्चा की गई. मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को समर्थन नामक योजना भी चला रहा है. तो सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवानी की रिपोर्ट।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी एवं शोध संस्थान नासिक महाराष्ट्र के सहयोग से गुजरात के भुज में सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय सीआरएस वर्कशॉप में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला ने विकास कार्यों से संबंधित जानकारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, सरकारी योजनाएं और अन्य सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के उपयोग पर जोर दिया। इस कार्यशाला में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग, संचालन और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ सामुदायिक रेडियो के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिलने वाली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी के सीईओ डॉ हरि कुलकर्णी ने बताया कि विशेष तौर से जहां एक भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं है, ऐसे डार्क डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मंत्रालय के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कम्युनिटी रेडियोस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा, ऐसे 5 राज्यों के लिए था और खास करके ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है, भुज जो है, वो भी ये डार्क डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर एक भी कम्युनिटी रेडियो नहीं है, इसलिए खास करके यहाँ पर ये 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में हिस्सा लेने गोंदिया महाराष्ट्र से आए दिलीप जैन कहते हैं कि सामुदायिक रेडियो किसी विशेष क्षेत्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि को सूक्ष्मता से दर्शाता है और समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है।
2 दिनों में वर्कशॉप में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको सस्टेन कैसे किया जाता है, इसमें कंटेंट कैसे बनते हैं, इसके टेक्निकल साइड क्या है और क्यों ये इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चलाता है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी।
सामुदायिक रेडियो स्थानीय प्रसारण का एक ऐसा रूप है जो समुदाय की आवश्यकताओं और हितों पर केंद्रित होता है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
In Nagaland, the ICAR Krishi Vigyan Kendra, KVK Wakha, has been awarded the best KVK in the northeastern region. The award was presented during the 32nd Foundation Day and Kisan Mela held in Tiruchirappalli, Tamil Nadu on August 21st. We have a report.
ICAR Krishi Vigyan Kendra Wakha has been adjudged the best KVK in the northeastern region. The award was conferred by the ICAR National Research Center for Banana in recognition of the team's contributions and achievements selected from over 200 nominations. Sharing her delight on the award, Ms. Thunjano S. Ism from ICAR KVK Wakha dedicated the award to all the stakeholders in the state's agri and allied sector.
My name is Thunjano S. Ism from ICAR KVK Wakha Nagaland. On the occasion of 32 Foundation Day of NRC Banana, we have received the Best KVK Award for Northeast Region. This award is for ICAR NEH Region, ICAR Nagaland Center, and ICAR KVK Wakha. And not forgetting the District Administration and the Agri and Allied Department of Wakha and the Wakha Farmers. We are so happy and blessed to receive this award, and we look forward more to work on banana for the farming community. Thank you.
A total of 19 farmers from Nagaland participated in the Mela to gain insight from the upcoming banana festival in the state, which is scheduled to be held from October. They are undergoing training in integrated nutrient management, high-tech banana cultivation practices, integrated pest and disease management, and food processing. The training program will further continue in Kerala from August 23. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
Madras Day is celebrated today. It was on this day in 1639 that Madras Patanam or Chennapatanam was purchased by the East India Company from Damariya Venkatadri Nayaka, the Viceroy of Vijayanagar Empire. And since 2004, the day has been celebrated in various places in the city. Let's hear.
The Tamil Nadu government officially changed the name from Madras to Chennai in July 1996. The coastal capital has 3 parliamentary constituencies and 6 assembly segments. A long walk on the shores of Marina is always a delight for the Chennaites. The statues of historical figures on the pavements of Marina enlightens the visitors. The lighthouse, Vivekananda Memorial, the old railway stations, eye hospitals, St. Thomas Mount, LIC building, Madras Port Trust, and the list of landmark buildings readings are endless. Anyone who arrives in Chennai from elsewhere can surely make a decent living in the city. From rag pickers to gold and diamond merchants, Chennai is an abode of super kings and a galaxy of multicultural and multilingual people of the country.
As a radio researcher, I always admire the Indian broadcasting system, particularly the Madras Radio Club. So in the Madras Day, you should remember the broadcasting in India, particularly the first radio station in Madras.
Joy, Akashwani reporting from Chennai.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कल 17 वर्षीय मोहसिन अली ने पहला स्वर्ण पदक जीता. डल झील में शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने 1000 मीटर कयाकिंग प्रतियोगिता में 4 मिनट 12.44 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता.
And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended the week's last trading session with losses of 0.85% each, snapping the six-day winning streak. The Sensex fell 694 points to close at 81,307. Similarly, Nifty lost 214 points to settle at 24,870. In the global crude oil market, Brent crude was trading nearly 0.3% down at $67.48 per barrel, and WTI crude was trading over 0.2% down at $63.36 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 99,580 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading down at 1,14,030 rupees per kilogram when reports last came in.
और श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या जन्मदिन. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी को याद करेंगे.
इन टुडेज एपिसोड वी विल टॉक अबाउट भिकाजी कामा, कोसाबाई पटेल एंड शोएबुल्ला खान.
ऑन दिस डे इन 1907, मैडम भिकाजी कामा रेज्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल फ्लैग एट सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एट स्टुटगार्ट इन जर्मनी. Bhikaji Kama was born on September 24, 1861, in an influential Parsi family. An outstanding lady of great courage, integrity, and passion for freedom, Bhikaji spent most of her time in social work. Madam Kama's intense love for nation made her sacrifice her family life and work tirelessly for the cause of the nation. In October 1896, when the Bombay presidency was hit by famine, and shortly thereafter by bubonic plague, Bhikaji provided care for the afflicted. In 1905, Madame Kama relocated to Paris, where she co-founded the Paris Indian Society. While living in exile in the Netherlands and Switzerland, Kama wrote and published revolutionary literature for the movement, including Bande Mataram and later Madan Stalwar, which was published in response to the execution of Madan Lal Dhingra. On this day in 1907, Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, where she described the devastating effects of the famine that had struck the Indian subcontinent. In her appeal for human rights, equality, and freedom from the Great Britain, she unfurled what she called the flag of Indian independence. For this act, she came to be known as the Mother of the Indian Revolution. Kama's flag was a modification of the Calcutta flag. It was co-designed by Kama and Vinayak Damodar Savarkar and would later serve as one of the templates from which the current national flag of India was created. Madam Bhikaji Kama was a pioneer amongst those who worked for the freedom of the country from abroad. It was her motto to serve humanity and to raise her voice against any exploitation of fellow beings.
Another interesting fact about today is that on this day exactly 100 years ago, in 1921, Gandhiji made a bonfire of foreign clothes during the non-cooperation movement. Gandhiji called for a campaign of non-cooperation with British rule on 31st August 1920. People were asked to adhere to renunciation of all voluntary association with the British government. Thus, people boycotted schools, colleges, courts, and withheld the payment of taxes.
It was during this non-cooperation movement that people burnt foreign clothes in public. Acts like these clearly sent a message to the British government that their days in India were limited.
On this day, Gosai Bhai Patel, a freedom fighter from Gujarat, snatched away a rifle from British policeman and hit him with the butt of the gun in protest against the killing of three nationalists in Mathwad. While growing up, though attracted in Gandhian non-violence principle, Gosai Bhai involved in a few violent attacks against British rule. He and his friends successfully attacked a police station and released the captives. He, along with some of his like-minded friends, tried to blow away a railway bridge too, but lack of technological know-how diffused the impact of the explosion.
Patel went on to become a successful politician. He was elected for the Gujarat Assembly thrice. He was also at the helm of Dandi's development. Gosabai became a strong follower of Gandhiism. He has written many books on Gandhiism and was active in social work till the age of 90, despite his failing health. Interestingly enough, on this day in 1639, Madras, now Chennai, was founded by the British East India Company on a sliver of land bought from local Nayak rulers. Later on, Robert Clive built the British Empire from the Madras Presidency. This day, 71 years ago, a patriot and freedom fighter, Shoaibullah Khan, was shot dead on 22nd August 1948 by the Razakars led by Qasim Rizvi. Shoaibullah Khan was the editor of Imroz, the Urdu daily published from Hyderabad. He was in favor of the merger of Hyderabad with the Union of India and opposed Qasim Rizvi's idea of an independent Hyderabad state. On the fateful day, Shoaibullah Khan was shot from behind. Department of Journalism of Osmania University has instituted a gold medal in honor of Mr. Khan for the top student of BCJ.
और अभिषेक, अब हम याद कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद यूआर अनंतमूर्ति को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है. उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार है. ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8 कन्नड़ साहित्यकारों में वे छठे थे. उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्गा के कुलपति के रूप में भी काम किया था. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था. 2013 के मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में यूआर अनंतमूर्ति को भी चुना गया था.
केट चोपिन पास्ड अवे ऑन दिस डे 1904. शी वाज एन अमेरिकन ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स बेस्ड इन लुइजियाना. शी इज अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड राइटर्स इन लुइजियाना Creole heritage, and she's best known for today for her 1899 novel The Awakening.
और अब हम याद कर रहे हैं पूर्व भारतीय फुटबॉलर सैयद शाहिद हाकिम को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लिया था. वो हकीम साहब नाम से लोकप्रिय थे. सैयद शाहिद हाकिम 5 दशक तक भारतीय फुटबॉल से जुड़े रहे. बाद में वो कोच बने और उन्हें द्रोणाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वो एशियाई खेल 1982 में पीके बैनर्जी के साथ सहायक कोच थे और बाद में मर्डेका कप के दौरान राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच भी बने.
Dua Lipa was born on this day in 1995. She's an English and Albanian singer, songwriter and actress. Her accolades include 7 Brit Awards and 3 Grammy Awards. Lipa worked as a model before venturing into music in 2014. Let's listen in to a hit track, Levitating, and it's from her album, Future Nostalgia.
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हरिशंकर परसाई को. आज उनकी जयंती है. हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा. उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं से आमना सामना करवाती हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है।
Yes, and Ray Douglas Bradbury was born on this day in 1920. He was an American author and screenwriter, one of the most celebrated 20th century American writers. He worked in a variety of genres, including fantasy, science fiction, horror, mystery, and realistic fiction. Bradbury is best known for his novel Fahrenheit 451 in 1953 and his short story collections, The Martian Chronicles in 1950, The Illustrated Man, 1951, and The October Country, 1955. Other notable works include the coming-of-age novel Dandelion Wine in 1957, the dark fantasy Something Wicked This Way Comes, 1962, and the fictionalized memoir Green Shadows, White Whale, 1992. He also wrote and consulted on screenplays and television scripts, including Moby Dick and It Came from Outer Space. Many of his works were adapted into television and film productions, as well as comic books. Bradbury also wrote poetry, which has been published in several collections, such as They Have Not Seen the Stars in 2001.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शंभु मित्रा को। आज उनकी जयंती है। उन्हें मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वो पश्चिम बंगाल राज्य के थे। शंभू मित्रा को उनकी फिल्मों धरती के लाल तथा जागते रहो से विशेष रूप से पहचान मिली थी। कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 1970 में शंभू मित्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वर्ष 1976 में शंभू मित्रा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and Tori Amos was born on this day in 1963. She's an American singer, songwriter, and pianist. She's a classically trained musician with a mezzo-soprano vocal range. Having already begun composing instrumental pieces on piano, Amos won a full scholarship to the Peabody Institute at Johns Hopkins University at the age of 5, the youngest person ever to have been admitted. Amos has received 5 VMA nominations and 8 Grammy Award nominations, and also won an Echo Classic Award for A Night of Hunters classical crossover album. And she's listed in VH1's 1999 100 Greatest Women of Rock and Roll at number 71. Let's listen in to a hit track, Cornflake Girl.
Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time.
और दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिक चिरंजीवी की का आज जन्मदिन है। तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड के आज के सबसे बड़े नेता अभिनेता चिरंजीवी ने अपने 3 दशक के फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसे अभिनेता का पात्र निभाया है जो गरीब और आम लोगों को बचाता है। चिरंजीवी को 4 बार नंदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी चिरंजीवी को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। फिल्मों के अलावा चिरंजीवी राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले उनका एक डायलॉग सुन लिया जाए।
Absolutely.
तुम्हारे बेटे का शरीर तो तुमसे दूर हो गया, मगर आत्मा इस तुलसी के पौधे में है। तुम हर रोज पानी डाल के उसे बड़ा करो। बढ़ते हुए इस पौधे को देखकर तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आता रहेगा। और इन पापियों को इनका पाप सोने से पहले, उठने से पहले, खाना खाने से पहले, बाहर निकलने से पहले उस पौधे के आगे हाथ जोड़ना। अगर ये पौधा भूल से भी सूख गया तो तुम पांचों की अर्थी मैं तैयार करूंगा। पौधा है समझ के उखाड़ा तो गर्दन उड़ा दूंगा।
Yes, and Chiranjeevi, known as a mega star, is widely regarded as one of the most successful and influential actors in the history of Indian cinema. Chiranjeevi holds the record for the most industry hits in Telugu cinema, with 8 films emerging as the top grossers of the time, a feat unmatched by any actor in the industry's 100-year history. He's also celebrated as one of the finest dancers in Indian cinema. Let's listen in to a song of one of his movies. Banjara, Banjara, teri galiyon
ka banjara, dil mein. तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए इजाजत.
नमस्कार.